तो यहाँ थोड़ी दूर पर एक वन है और उस वन में पंक्ति की पंक्ति ताल के पेड़ों की है और वहाँ बहुत से ताल के फल पक पक कर गिरते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, पर वहाँ रहता एक दैत्य, उसका नाम है धेनुक। उसके मारे वहाँ के फल किसी के काम नहीं आते, वो गधे के रूप में रहता है और वो स्वयं भी बड़ा बलवान है। उसके साथी बलवान दैत्यों का वहाँ समूह बसता है, बहुत बहुत दैत्य वहाँ आकर के बस गए हैं और वो सभी प्राय गधे के रूप में रहते हैं और वो आदमियों को खाता है। अब तक न मालूम कितने आदमियों को वो खा गया। यही कारण है कि कोई भी आदमी डर के मारे उस वन में जाता नहीं। फलों में बड़ी सुगंधि आती है, वो कुछ न मालूम कैसे ताल के फल हैं। तो हमारा मन तो चलता है पर हमने कभी खाए नहीं, डर के मारे सब हमारे घर वालों ने, बाबा ने, सब ने कहा कि वहां मत जाना, तो हम कभी गए नहीं। पर देखो ना, उनकी गंध यहाँ तक आ रही है और बड़ी अच्छी महक मालूम होती है और उनका ध्यान करते ही रस आने लगता है। तो हमारा मन श्रीकृष्ण मोहित हो गया है उन फलों की सुगंध से, मचल रहा है मन की जल्दी से वो ताल के पेड़, ताल के फल मिल जाए तो खाएं हम उन्हें, तो तुम हमें वो फल खिलाओ। अब ये वात्सल्य लीला है भला, यहाँ कल अपने बात हुई थी भगवान के ऐश्वर्य का, यहाँ कोई नहीं तो भला इतने बड़े भगवान से कौन कहे कि तुम हमको वहाँ के फल खिलाओ। पर इनके मन में ऐश्वर्य तो नहीं, पर ये जानते हैं कि इनमें बल बहुत है और नंद बाबा कहा करते हैं कि बड़ी कृपा नारायण की है, ये जहाँ जाते हैं वहीं ये विजयी होते हैं, तो और इनको कोई जीत नहीं सकता, तो वहाँ शायद फल भी मिल जाए खाने को। तो कहा कि भाई हमारी तो ये इच्छा है, पर गम्यता हम इधर रोचते। अब तुम लोग ठीक समझो तो चलो वहाँ पर फल खिलाओ हमको, न ठीक समझो तुम्हारी खुशी। एवं सूर्य बच श्रुआ स्वित प्रियत की ईर्षया प्रहस्य जगमत गोपृत तालवनम प्रभु बल प्रविष्ट बाहूभ्याम तालान संपरिकंपयन फलानि पातयामास मतंग जीवोजसा फलानाम पततां शब्दं निशम्यासुरासव अभिधावच्छित्तरं समयं परिकंपयन समेत तरसा प्रत्येक द्वाभ्याम परभ्याम बलं बलि निहत्योर्षिका शब्दं मुंचन परिसरत खलः पुनरासाज संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्षितः चरणावपरौ राजन् बलाय प्राक्षिपदुरुषा सतम गृहीत्वा प्रपदुर्भामयित्वै कपालिना चिक्षेप्तृ राजा अग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम् तेनाहतो महातालो विपमानो बृहच्छिराः पार्श्वस्थम् कंपयन् भग्न सचान्यम् सोऽपि चापरम् बलशलीलयोत्सृष्ट खरदेह चाहताः तालाश्चकम् पिरे सर्वे महावातीतायुव नैतचित्रम् भगवती हनन्ते जगदीश्वरे ओत प्रोतमिदम् यस्तन्तुसङ्गस्य यथापटः तत कृष्णम् च रामम् च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारो भद्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवः पांस्तानापतम् पततः कृष्णो रामस्य द्रुपलीलया गृहीत पश्चाचरणान् प्राहिणोत्तीर्णराजसु फल प्रकर संकीर्णम् दैत्यदेहर्गतासुभिः रराजभूषतालाघरीघनैव नमस्करम् तयोः सुमत्कर्म निशाम्य विबुधादयम् मूचू पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वार्यान्तिष्ठुः अथ तालफलान्यादन् मनुष्यागतसाध्वसः तृणम् तपश्वस्येरुहृदधेनुगनकानने। कन्हैया तो तैयारी बैठे थे तो कहा कि दाऊ भैया चलो, तो दोनों हंस पड़े इनकी बच्चों की बात सुनकर और उन बच्चों को प्रसन्न करने के लिए। अब इनको तो सखाओं को सुख देना है, तो सखाओं को सुख देने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए दोनों हंसकर श्वेत प्रीत की ईर्ष्या, अपने जो मित्र हैं सूरज हैं इनको सुख देने के लिए वहां से ही चल पड़े। और अब दाऊ जी जब आगे आगे होते हैं तो श्री कृष्ण आगे बढ़कर कोई काम नहीं करते, दाऊ जी करते। तो दाऊ जी आगे आगे सरदार सब चले और तार के पेड़ों को पकड़ पकड़ कर लगे हिलाने, एक को हिलाया दूसरे को हिलाया, तो जैसे कोई मतवाले हाथी का बच्चा बड़े जोर से किसी पेड़ को हिलाता है, इस प्रकार ये पेड़ों को हिलाने लगे जोर जोर से और सब फल नीचे गिरा दिए, पके फल सब। तो वो ये दैत्य तो सब निर्भय रहे वहां पर, इनको तो किसी बात की शंका थी नहीं कि हमारे जंगल में भी कोई आ सकता है। जब इन्होंने फलों के गिरने की आवाज सुनी, बड़ी भारी आवाज हुई, तब उस दैत्य ने देखा कि क्या हो गया, कैसी आवाज, तो वो दौड़ा। इतना बल था और इतना वेग था कि पृथ्वी कांप गई, पहाड़ कांप गए उसके दौड़ने पर, बड़ा बलवान रहा हो। तो उसने आते ही बलदेव जी के पास पिछले पैरों को उठा करके दो लत्ती झाड़ दिए दाऊ जी पर, और लोग रेंगता हुआ पीछे हटा। तो वो पीछे हटकर फिर क्रोध में भर करके रेंगता हुआ दूसरी बार फिर पास पहुंचा दाऊ जी के, तो दाऊ जी ने आग देखा न ताव और उसके पिछले पैरों को पकड़ने के लिए लपके, तो उसने दुलत्ती झाड़ने की फिर चेष्टा की, तो बलराम जी ने वो पैर उठा के दोनों पैरों को पकड़ लिया पीछे वालों, एक ही हाथ से पकड़ लिया, हाथ बड़े हो गए, पकड़ लिया एक ही हाथ से और आकाश में यूं घुमाया, पकड़ के घुमा करके उस पेड़ पर दे मारा। बस पेड़ के लगते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो सदगति को प्राप्त हो गया। तो जब उसकी चोट लगी उस पेड़ के, बड़े जोर से वो गिरा, उसमें बड़ा बल था और बड़ा बोझ था उसमें, तो उस ताल का पेड़ तो बड़ा भारी था, बड़ा विशाल, तो वो पेड़ पर इसकी जब चोट लगी इसके शरीर की, तो पेड़ भी चढ़ाकर जड़ से उखड़ के गिर पड़ा। और पेड़ जब वहां बगल बगल में बहुत पेड़ थे, एक पेड़ गिरा दूसरे पर, दूसरा पेड़ टूटा गिरा तीसरे पर, तीसरा गिरा चौथे पर, तो एक दूसरे को गिराते हुए ताल के बहुत से पेड़ एक साथ ही चढ़ाकर गिर पड़े। अब बड़ा वहां पर शोर हो गया, तो और वो ताड़ के सारे पेड़ हिल गए। तो कहते हैं कि भाई ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं, जैसे तूफान आवे और तूफान में बड़े जोर की आंधी आवे और जिससे सारे पेड़ हिल जाएं, इस प्रकार से बहुत से टूट पड़े और हिल गए सब के सब। तो कहते हैं कि भाई ये कोई बड़ी बात आशी नहीं, तो चित्रम भगवती अनंते जगदीश्वरे उत प्रोध मिदम इसमें तंतु सुंग से यथापट। बोले भाई भगवान ये बलराम जी हैं, ये तो जगदीश्वर हैं, सारा संसार इन जगदीश्वर में वैसे उत प्रोत है जैसे सूत में कपड़ा, सूत ही सूत है, तो भगवान ही भगवान हैं, तो इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो जब इस प्रकार से धेनुकासुर मारा गया और ताल के पेट टूटे, तो उसके जो जात भाई थे धेनुकासुर के भाई बंद सब जात वाले वहां पर बड़े बड़े गधे सब रहे, वो बलराम शाम पर टूट पड़े, बड़े बेग से जोर से उछलते हुए आए और सबने अपनी अपनी जान में दुलत्ती उठा उठा करके मारने की चेष्टा की, पर ये ऐसे फुर्तीले हाथ इन दोनों के कि पैर उठा के घुमाया और फेंका, ऊपर पैर उठा के घुमाया और फेंका, इस प्रकार से जो जो पास आया उन सबको लिया खेले ही खेल में और उनके पिछले पैरों को पकड़ पकड़ के ताल के पैरों पर दे मारा। तो वो सारी जमीन वहां की थी वो ताल के पेड़ों से पट गई, तमाम ताल के पेड़ ही पेड़ बिछ गए और तमाम फली फल वहां पर, तमाम ताल के फलों से भूमि भर गई वहां की। तो और सारे दैत्यों के शरीर वहां पर पृथ्वी पर फैल गए, न मालूम कितने दैत्य मरे। तो ताड़ और ताड़ के फल और दैत्य इनके मारे वो सारा वो वहां का जो भूभाग था वो ढक गया, जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं उसी प्रकार से वहां की भूमि ढक गई। तो देवता तो सब देख रहे थे, कि देवता डर भी जाते हैं बहुत जल्दी और जब इनके मन की होती है तो फूल बढ़ाने लगते हैं। तो देवता सब देख रहे हैं मंगलमय लीला राम श्याम की और देवता बस लगे फूल बरसाने, तो फूल की टोकरी लिए रहते बरसाने लगे और बाजे बजा बजा करके ऊपर से धुंधुबी बजाने लगे, स्तवन करने लगे। ममुचू पुष्ट वर्षाणी चक्रवाद्यान पुष्ट देवसत सुमत कर्म निशान विबुदा दया। तो इस प्रकार से देवताओं के बाजे बजने लगे, स्तुतियां गान होने लगा। अब तो श्री कृष्ण ने कहा भाई तुम लोग खूब खाओ फल और तमाम जाकर के बोल देना गांवों में कि सब मनुष्य यहां आए और फल खाए। अब निष्कंटक हो गया ये वन फल खाने के लिए सबको, और गायों को भी छोड़ दो, इधर कोई हर्ज की बात नहीं, पशु यहां पर स्वच्छंदता से घास चरें और मनुष्य यहां के फल खाएं। तो उस दिन से वो मनुष्यों के लिए जो अब तक उस पर रोक लगी हुई थी बांध था वो टूट गया और मनुष्य वहां पर फल खाने लगे बड़े सुंदर सुंदर और ये पशु घास चरने लगे। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानो अनुगय ब्रजति। वो कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्णचंद्र अब वहां से दाऊ जी के साथ ब्रज में लौटे, ग्वाल बाल सब उनके पीछे पीछे, सूर्यमान उनके गोपी सागर जो बजमा ब्रज, ग्वाल सारे ग्वाले बच्चे सब पीछे पीछे गीत गाते हुए, आज तो ताल के फल खा करके आए ना ताड़ के, तो नशा चढ़ा है सबको। तो वो मजे में पीछे पीछे दौड़ते हुए गाते हुए सब चले। तम गोरुज छुरित कुंतल बद्ध वर्रपन्न प्रसूल क्षण चारुभासम वेणुम कुणंत मनु गैरनु गीत कीर्तिम गोटू जिदीक्ष दशोभ्य गमन समेता। वो श्रीकृष्ण के घुंघराली अलकावली पर गायों के खुर से उड़ उड़कर तमाम धूल पड़ी हुई थी, सिर पर मोर पंख का सुंदर मुकुट था और बालों में अपने आप और सखाओं ने भी सुंदर सुंदर वन्य पुष्प गूंथ दिए थे और नेत्रों में तो इनके मधुर रस बहता ही है, बड़ी मीठी मीठी चितवन इनकी और मुख पर मनोहर मुस्कान, मधुर मधुर मुरली बजा रहे और ग्वाल बाल सब उनके साथ साथ ललित कीर्ति भगवान की गा रहे। रोज का काम श्री गोपांगनाएं बहुत सी गोपियां एक साथ बंसी ध्वनि दूर से सुनने के पहले प्रतीक्षा में ही बाहर निकल आई। न मालूम उनकी आंखें श्याम सुंदर को देखने के लिए कब से तरस रही थी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये ब्रज के लोगों की आंखें निरंतर प्यासी बनी रहती हैं हरि दर्शन की, तरसती रहती हैं। दर्शन मिल जाता है तो इनके प्रेम के आंसू आ जाते हैं, देख नहीं पाती। एक कवि ने बड़ी सुंदर इस पर बात लिखी, या दुखिया आंखियान को सुख सिरजो ही ना है, देखत बने न देखते बिन देखे अकुला है। कहने लगे कि इन हमारी दुखियारी आंखों के लिए तो कभी सुख का सृजन हुआ ही नहीं, सुख बना ही नहीं। देखते बने न देखते, जब कभी सामने आते हैं तो धारा बहने लगती है आनंद आश्रुओं की, तो दिखते नहीं कुछ भी, और नहीं दिखते तो प्राण खुलाते रहते, आंखें खुलाती रहती हैं। तो इनकी आंखें नित्य 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 कृषित रहती हैं भगवान के मुख कमल रस सुधा का पान करने के लिए, तरस रही आंखें। तो गोपियों ने मानो अपने नेत्र भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद मुख कमल मकरंद रस का पान करके अपने दिन भर के विरह की ज्वाला को मानो शांत किया, और भगवान ने भी उनकी व्रीडापूर्ण सलज हंसी और विनय से युक्त उनकी विकट चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। यशोदा मैया और रोहिणी मैया का तो वात्सल्य समुद्र मानो उमड़ ही रहा था। तयो यशोदो यशोदा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्र वत्सले यथा कामं यथा कालं यधत्तां परमाशिषं गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितौ धनन्युपहृतं प्राश्च स्वादनमुपदालितौ संविश्य वरसय्यायां सुखं शुशुपतुर्ब्रजे। एवं स भगवान् कृष्णो वृंदावनचर क्वचित यो राममृति राजन कालिंदी सखीवर व्रता। यशोदा मैया रोहिणी जी ये तो बस प्रतीक्षा कर ही रही थी, सब चीजें सजा के रखी थी पहले से, खाने पीने का सारा सामान, उबटन का सामान, नहाने का सामान, जैसे साबुन तेल रखते हैं ना आजकल लोग, गंदी चीज, और उन्होंने तो बस पहले से उपटन सब संजो के रखा, नहाने के लिए चीज रखा और खाने का पहले रखा, आते को थोड़ा कलेवा कर लेंगे, कुछ माखन माखन खा लेंगे, उसके बाद उपटन लगाएंगे। तो इनका स्नेह सागर उमड़ रहा था वात्सल्य का, श्याम राम के घर पहुंचते ही और उनके इच्छा के अनुसार और समय के अनुरूप पहले से ही वो सजा सजा कर रखी हुई सब वस्तुएं खिलाई पिलाई पहनाई, तेल उपटन लगाया, स्नान करवाया और दिन भर घूमने की थकान को दूर किया, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नए नए धूल में भर गए सब, नए कपड़े पहना दिए, फिर बड़े सुंदर दिव्य पुष्पों की माला की मैया ने पहले ही बना कर रखी थी। मैया जानते कि इनको पुष्प बड़े प्यारे हैं, तो पुष्पों की दिव्य पुष्पों की माला पहना दी, चंदन वंदन लगा दिया, फिर कहा अब जीमो मजे में, कलेवा तो पहले कर लिया, तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन माताओं का परोसा हुआ। तो जनन्युपहृतम पराश, ये भोजन जो है ना, भोजन में एक चीज होती है, भोजन से पेट तो हरेक का भरता है, पर कोई भोजन पेट भर के पेट में दुख दर्द पैदा कर देता है। भोजन बनाने वाले का और खिलाने वाले का जैसा भाव होता है उसके अनुसार भोजन का प्रभाव पड़ता है शरीर पर। इसलिए अपने यहां कहा कि माँ के हाथ का भोजन इससे बढ़कर अमृत कहीं नहीं, पति के लिए पत्नी के हाथ का भोजन, ये दूसरे लोग जो भोजन बनाते और परोसते हैं उसमें वो हृदय का अमृत नहीं रहता, रहता ही नहीं। चीज चाहे कैसी बन जाए, बढ़िया बन जाए, देखने में खाने में सुंदर लगे, पर उनके अंदर अमृत नहीं रहता, और भगवान ये खोजते अमृत। सखाओं का जूठन खा लेते हैं, उनमें अमृत रहता है। तो ये मैया के हाथ का दिया हुआ भोजन, दोनों मैयाओं ने भोजन सामग्री तैयार की, उसमें अमृत भरा हुआ, और बड़े लाड प्यार से दुलार दुलार कर जिमाया और बड़े प्यार से फिर सुला दिया इनको। राम श्याम बड़े आराम से सो गए, धनु का सो लीला समाप्त हुई। अब यहां से एक नई लीला का उपक्रम शुरू होता है, उसमें एक तो ये काली नाग की जो पत्नियां रही, ये पूर्व संचित इनका कुछ ऐसा था, ये श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, दूसरी चीज ये थी कि भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि विषधर सांप को भी वो अपना प्यार देंगे। तीसरी चीज, यमुना का जल जो विष से दूषित हो रहा है उसको पवित्र करना है। तो भगवान की लीला शक्ति ने यहां पर अपना काम शुरू किया। तो एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित जयो राममृते राजन कालिंदी सखिव्रत यथ गावश्च गोपाश्च निराघातप पीड़िता दुष्टम जनम पुस्तस्याश दूषित विषाभस्तुपस्थ्य दैवोपहत चेतस निपेतुर्वसवस्तर्वे शैलांते गुरुद्वः वीक्षतान वै यथा भूतथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वर ईक्षयामित वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत ते संप्रतीत स्मृत समुत्था जलांतिकात आसन सदस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम अनुमंसत तद्राजन गोविंदा विग्रहेक्षितम पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। एक दिन की बात ये भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से ही ये सारे काम होते हैं। भगवान से अलग जाना, हटना, निकट आना, ये कोई वहां पर अपने आप नहीं करता है। भगवान की लीला शक्ति का, योग माया का जो आयोजन है, जैसी उसकी योजना है, उसके अनुसार एक बात अवश्य रहती है कि ये ब्रजवासी लोग तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कन्हैया को सुख न मिले अपनी जान में। और कन्हैया तो वहां पर वे तो प्रकट ही हुए हैं इनको सुख देने के लिए ही, इनके सुख का आस्वादन करना और इनसे सुख प्राप्त करना, ये कन्हैया का प्रकट होने का खास उद्देश्य है। असुर मारण इत्यादि जो है ना, ये तो बीच की बात है। असुर मारण आदि कोई खास चीज नहीं है, असली काम तो है इनका प्रेमियों का रसास्वादन, प्रेम रस का करना और उन्हें कराना। तो आज इनकी लीला शक्ति ने एक विशेष नया खेल खेलना प्रारंभ किया। तो ये गए गाचराने गए तो दाऊ जी को साथ नहीं ले गए। आज भी गाचराने गए तो बड़ा सुंदर सुंदर घास था वहां पर, पानी था, लेकिन ये गायें चरती चरती आगे बढ़ गई और न मालूम क्या हुआ, गायें बिदक गई। सब खेल रहे थे सब, तो इनकी खेल ही खेल में गायें जो बड़ी शांत रहती वो आज बिजुक गई। जो श्याम सुंदर को देखा ही करती निरंतर, वे आज श्याम सुंदर को छोड़ के आगे बढ़ने लगी, दौड़ने लगी। क्यों दौड़ने लगी? कि वो अचिंत जो लीला शक्ति भगवान की, उसने अपनी योजना को सिद्ध करने के लिए डोरी खींच दी, ऐसी खींच दी तो गायें भाग चली। आगे सघन बन, तो अब ये खेल रहे थे, जब गायों को भागते देखा तो इनकी लीला भी स्थगित हो गई। इन्होंने कहा, अरे घेरो गायों को। हंसने लगे और कह रहे, भैया ये घेर लाओ गायों को, तो ये भी पीछे पीछे तमाम गोप भाग चले। सुने नहीं, आगे आगे गायें भागी जाएं, पीछे पीछे ये शिशु सब भागे जाएं। ये जरा धीरे धीरे, जरा श्याम सुंदर धीरे धीरे चलना, सब आगे भाग गए, आंखों से ओझल हो गए और श्री कृष्ण अकेले पीछे रह गए। तो ये अब मानो एक डाल को पकड़ करके खड़े हो गए और ये दहनी मुट्ठी से अपने होठों को लगा करके और यूं मानो संकेत सा यूं करने लगे, पर सखाओं ने आज ध्यान नहीं दिया तो ये बोले अच्छा कुछ देर आराम ही कर लें। तो बंसी बट शीतल जमुना तट अति परम सुखदाय, सूर श्याम तह बेट बैठ विराजित सखा कहाँ बिरमाए। सोचने लगे बैठ गए जाके बड़ के पेड़ के नीचे कि देखे क्या होता है, इनको तो लीला करनी। तो सोचे सोचा अब तक आए नहीं रहे, क्या हो गया। फिर बाल लीला, फिर माधुरी आया, सारे विश्व नियंता, विश्व की तमाम चिंताओं को क्षण भर में हरण करने वाले सखाओं के लिए चिंतित हो गए। आज दो घड़ी बीत गई, अरे नहीं लौटे, क्या हुआ। तो इनकी चिंता का पार नहीं, बड़े चिंतित हो गए। इधर गायें वो सघन वन की सीमा को पार करके आगे जा पहुंची तो दौड़ती दौड़ती गई, और जेठ आषाढ़ का जेठ का महीना रहा तो बड़ी प्यास लग गई, और तमाम ग्वाले भी पीछे पीछे, उनको भी प्यास लग गई। तो कहा भी पानी पीना है, तो भगवान की लीला शक्ति का काम उधर ही जा निकली कि जहां वो काली रथ था, जा निकली उधर। श्री कृष्ण ने सोचा कि राम 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 राम, अगर ये उधर से जा निकली और अगर उन्होंने वहां का पानी पी लिया तो क्या होगा। फिर ये तो सारी गायें और ये बछड़े सब के सब प्राण ही नहीं हो जाएंगे। तो श्री कृष्णचंद्र चित्कार करने लगे, जो जो से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, या गावखलु देवता ब्रजसदास मस्माक मुच्चैस्तराम, ये बालाश्च सदैव जीव तुलितास्तेमी विपन्ना पुरः, हा हंत स्वयमस्मि तत्त्वचर किं भ्रातरं मातरं कातम सर्वजनं च वच्मि पमधिक चापल्यत साहसम। ओहो करे लगे कि ये गायें क्या हैं, ये तो निश्चित रूप से ही हम ब्रजवासियों के लिए सबसे अधिक आदर के पात्र देवता ही हैं ये, और ये हमारे प्राण प्रिय, ये तमाम बालक कैसी विपन्न दशा में जा पड़े होंगे, और मैं इनका सहचर, मैं जाके क्या उत्तर दूंगा, मैया से क्या कहूंगा, और इनके माता पिता से क्या कहूंगा, बाबा पूछेंगे तो बाबा से क्या बताऊंगा, क्यों इधर मैंने इनको आने दिया। यूं अनुताप करते हुए पीछे दौड़े और लेकिन वहां तो दूसरी बात हो चुकी। ये गोप शिशु जानते थे, इन्होंने सुन रखा था अपने माता पिता से कि वहां एक अजगर रहता है, सांप रहता है, बड़ा भारी जहर फैला रहता है, और वहां कभी जाना मत। पर आज उनको जाना, ये जानते हुए भी उधर जा निकले, और बड़ी प्यास लगी हुई थी गायों ने जा करके, और पानी में जरा सा मुंह लगाने की चेष्टा की कि विष फैल गया, तमाम गायें वहां पर गिर गई। पीछे पीछे ये गए, बस वो तो खैर पशु रही ज्ञान नहीं, लेकिन ये सब जानते थे। पर इन लोगों ने भी आज श्रीराम सुदाम इत्यादि ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, गायों के पीछे पीछे दौड़े और सोचा अभी यहां के लाएंगे। तो बस वो गए वहां पर जाकर के जरा सा पानी की तरफ उन्होंने मुंह किया कि बस सब के सब मूर्छित हो गए।